मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 3 मई 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विषय चुना है, हालांकि वो कल के ही विषय के कंटिन्यूएशन में है, लेकिन इनफैक्ट है वह बिल्कुल अलग ही। आपको ध्यान होगा कि कल के लाइफ मैनेजमेंट में हम लोग एक जो बातें कर रहे थे वो खासकर कुछ शांति की बातें थी और उसके तहत ही हम लोग विनोद खन्ना जी को आधार बनाकर एक शांति कैसे प्राप्त होती है, इन सारे मुद्दों पर थोड़ी सी बातें हम लोगों ने की थी और उसी में बात आई थी गौतम बुद्ध की। तो मित्रों जो गौतम बुद्ध की बात है उसी को मैं थोड़ा सा अलग संदर्भ में आगे बढ़ा रहा हूं। आप लोगों को शायद याद हो, मैंने इससे पहले चर्चा भी की है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि गौतम बुद्ध के जीवन के जो अंतिम शब्द हैं वो है अपो दीपो भव। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम चरण में थे उस समय वो केवल अपने शिष्य जो उनके चचेरे भाई भी थे आनंद उन्हीं के साथ थे, दोनों बिल्कुल अकेले थे। इस तरह के वर्णन मिलते हैं कि गौतम बुद्ध का जो सिर था वो आनंद की गोद में था और आनंद देख रहे थे कि धीरे धीरे गौतम बुद्ध अपने शरीर को त्यागने के करीब हैं। वो बहुत भावुक थे और उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या संदेश है। गौतम बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और केवल 3 शब्द कहे जो उनके जीवन के अंतिम शब्द कहे माने जाते हैं और इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनके 3 अंतिम शब्द थे अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बहुत ही सरल शब्द हैं और बहुत ही गहरा अर्थ है अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसकी व्याख्या के रूप में मैं पहले कुछ बातें आप लोगों से कह चुका हूं, मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ उसमें एड ऑन करूं, कुछ नई बातें उसमें जोड़ूं। दोस्तों मेरी इसके बारे में जब कुछ लोगों से बात होती है कि अपो दीपो भव का क्या मतलब है, तो वो शाब्दिक अर्थ तो बिल्कुल सही सही बता देते हैं कि अपना दीपक खुद बनो, फिर वो आगे ये भी बता देते हैं कि अपना रास्ता खुद तलाश करो। बट नेचुरल है कि अगर अंधेरे में मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है तो मुझे एक रोशनी का कोई आधार चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, हाथ में टॉर्च चाहिए, पुराने जमाने की भाषा में कहें तो दीपक चाहिए। तो वो दीपक कौन बने, कहां से आए वो दीपक? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि दूसरे की बातों को सुनने और मानने की जरूरत नहीं है, सुनो, सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारा अपना अनुभव हो, यानी कि अपना दीपक खुद सोचो, जो कहा जा रहा है उस पर विचार करो, अच्छी तरह से परखो और फिर अगर ठीक लगता है तो उसे अपने जीवन का रास्ता, अपने जीवन के रास्ते का दीपक बनाओ, और यदि स्वीकार नहीं हो पा रहा है तो उसे रिजेक्ट कर दो, कुछ और ढूंढ लो, कुछ नया सोच लो, कुछ नया बना लो। ये गौतम बुद्ध की बहुत ही अद्भुत बात है, मतलब ऐसा गुरु जो सीधे सीधे कह रहा है कि मेरी भी बातों पर विश्वास मत करो, मैं जो कह रहा हूं तुम अपनी बात खुद ढूंढो। तो मित्रों कुछ इसको इस रूप में व्याख्यायित करने के बाद फिर जो जिस बात पर मैं आज आना चाह रहा हूं वह यह है, इसको पूरी तरह से तर्क पर आधारित बना देते हैं कि यह जो बात है ये लॉजिकल है। लॉजिकल तो है, उस सेंस में लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, जो भौतिक जगत में जिस तरह से हम इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन यहां वो मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध की जो जीवनी है उससे जो संदेश निकलते हैं उसको अगर जोड़कर हम देखें तो थोड़े से अलग तरीके के अर्थ इससे आते हैं जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। मित्रों तर्क होता क्या है, लॉजिक एक ऐसी चीज है जिसमें केवल बुद्धि की प्रबलता है, प्रखरता है, मतलब एक तलवार की धार है, उस तलवार की धार से आप किसी का भी खंडन मंडन कर सकते हैं, काट सकते हैं और सामने वाला आपकी प्रतिभा पर, आपकी बुद्धि की प्रखरता पर दंग रह जाएगा, उसे दाद देगा, नतमस्तक हो जाएगा और अपनी हार स्वीकार कर लेगा, क्योंकि तर्क में इतनी शक्ति तो होती है। और आचार्य रजनीश को पढ़िए तो वो तो तर्क के मुझे बादशाह मालूम पड़ते हैं, गजब के तर्क। लेकिन कभी कभी उन्हीं के जब मैं बहुत से तर्कों को अनुभव या व्यावहारिकता के स्तर पर परखने की कोशिश करता हूं तो फिर वो साफ लगता है कि तर्क केवल तर्क के लिए ही है। और खुद रजनीश ने कई जगह ये बात कही भी है, आचार्य रजनीश ने, कि तर्क ही जीवन नहीं है, कि आप केवल तर्क से जो बात सिद्ध कर सकते हैं वही बात सही हो सकती है और वही बात व्यावहारिक भी हो सकती है। सही होना अलग बात है और व्यावहारिक होना अलग बात है, और सही होने का मतलब सत्य होना नहीं है, सही और सत्य में फर्क होता है। किसी दिन मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा। तो फिर दीपक की जो बात कह रहे हैं गौतम बुद्ध, वो क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो दीपक का उन्होंने जो प्रतीक चुना, जो सिंबल चुना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। जब मैं गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को देखकर इसे समझने की कोशिश करता हूं तो एक बात मेरी पकड़ में आई कि जो गौतम बुद्ध का जो पूरा का पूरा दर्शन है, उनका उनके अपनी जो जीवन प्रक्रिया रही है, जो साधना के दौर की भी और साधना के बाद की भी, उसमें व्यावहारिकता बहुत जबरदस्त रही है। और इसीलिए उन्होंने मध्यम मार्ग की बात भी कही कि तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे संगीत ही न निकले। उन्होंने सितार के तार के बारे में बात कही, अगर बहुत ज्यादा कस दोगे तो वह टूट जाएगा और यदि उसे बहुत ढीला छोड़ दोगे तो उससे म्यूजिक ही नहीं निकलेगा, संगीत ही नहीं फूटेगा, झरेगा ही नहीं संगीत। ये बात उन्होंने कही, इसे ही हम कहते हैं मध्यम मार्ग। जो मध्यम मार्ग होता है वो इनफैक्ट व्यावहारिक मार्ग होता है। जैसे अगर हम ज्ञान प्राप्ति वाले प्रसंग को देखें गौतम बुद्ध के, तो बड़ा अद्भुत है और बहुत ही सिंबॉलिक है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध बहुत परेशान थे, साधना कर रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं रही थी, तो एक चरवाहन आई और उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधक बैठे हुए हैं, शरीर सूख कर कंकाल हो गया है। वो देख करके उन्हें वो चौंक गई। एक दिन वो खीर लेकर के आई और उन्होंने ऑफर किया बुद्ध को, जो उस समय बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ ही थे। उन्होंने खीर ऑफर किया और जैसे ही गौतम बुद्ध ने वह खीर खाई उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये एक कथा कही जाती है और जिन्होंने खीर खिलाई उनका नाम था सुजाता। अब ये खीर खाते ही जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। अभी तक वो अपने शरीर के तार को खींच रहे थे जो टूटने के करीब था, वो जीवन की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो व्यावहारिकताएं हैं, उनसे अलग थे। उन्हें लग रहा था कि खाना पीना छोड़ देने से शायद ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप में देखें तो जब हम भूखे होते हैं उस समय झुंझलाते रहते हैं, अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि शरीर को भोजन चाहिए, वो उसे नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा विहीन अगर हमारा शरीर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी चेतना भी हो रही है, और वही स्थिति बुद्ध की उस समय थी। जिस दिन ये खीर उन्हें दी गई, कहा जाता है कि पूर्णिमा का दिन था, उसी को हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा, कुछ लोग इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, जो भी 10 तारीख को आने वाली है। और गौतम बुद्ध के साथ एक बहुत अद्भुत बात यह भी रही है, एक संयोग ही कह लीजिए, कि उनका जन्म भी पूर्णिमा पर हुआ था, जिसे हम आप देखेंगे बुद्ध जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, और निर्वाण की प्राप्ति भी उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही की थी। जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा को, और निर्वाण की तिथि भी बुद्ध पूर्णिमा है। ये गौतम बुद्ध के साथ एक अद्भुत बात है। तो यहां जो पूर्णिमा है वो सिंबॉलिक रूप में फिर से हमारे ज्ञान की चांदनी है, या अज्ञान का अंधकार अमावस्या नहीं है, ये चांदनी रात है। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अंधेरे में भी आपको रोशनी दिखाई देने लगी। तो यहां हम देखते हैं कि जो खीर का जो प्रतीक है, यह बेसिकली अनुभव का प्रतीक है। अनुभव, जब हम अनुभव को इसमें जोड़ देते हैं तो चीजें तर्क पर ही आधारित नहीं रह जाती, कि तर्क से अगर मैं किसी चीज को सही सिद्ध कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास उतनी दार्शनिक क्षमता है, उतना ज्ञान का भंडार है, रेफरेंसेस रटे हुए हैं, पूरा दर्शन शास्त्र मेरे दिमाग में बसा रचा हुआ है, मैं किसी को भी ध्वस्त कर सकता हूं, और ऐसा होता है। लेकिन जब उन्हीं बातों को व्यवहारिक जीवन में लाया जाता है तो वो संभव ही नहीं हो पाता, बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। तो अब हम तार्किक जीवन को दीपक माने या अपने अनुभवगत जीवन को दीपक माने, और दोनों में बहुत फर्क है। मित्रों, मुझे कभी कभी लगता है कि आप देखिए कि अक्सर कोई परिवार हो, कोई घर हो, उसमें पीढ़ियों का द्वंद मिलता है। मतलब जो नौजवान पीढ़ी है, जो 20 से 30 35 साल के उम्र की पीढ़ी है, खासकर 20 से 30 के बीच की पीढ़ी है, और एक जो उनकी जो बड़ी पीढ़ी है, बुजुर्ग पीढ़ी है, जो 50 के बाद की उम्र की पीढ़ी है, मतलब दोनों के बीच में लगभग आप समझ लीजिए 20-25 साल का फासला है। आप देखिए कि उनमें लगातार एक ही बिंदु पर टकराव होते रहते हैं। टकराव अक्सर ये पीढ़ियों का द्वंद है और ये हर युग में रहा है। आप पुराने साहित्य उठा करके देखिए तो उस युग में भी ऐसा था। ये मत समझिए कि केवल आज ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि आज ही ऐसा हो रहा है, नहीं। तो ये जो द्वंद है, ये हमें लगता है कि ये पीढ़ियों का द्वंद है। बेसिकली ये पीढ़ियों का द्वंद नहीं है, ये सच मायने में तर्क और अनुभव का द्वंद है। जो नई पीढ़ी है, जो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है, उसके पास तर्क है, वो अभी पढ़ रही है, चीजों को देख रही है, समझ रही है, जिज्ञासाओं से भरी हुई है, और उसे जो समझ में आता है उसे वो अपने लिए रामबाण मान करके, ब्रह्म वाक्य मान करके स्वीकार कर लेती है, लगता है उसे कि यही सच है। लेकिन जो पीढ़ी 50 को पार कर चुकी है, उसके पास 20 से 30 तक उसकी भी यही स्थिति थी जो आज उनके बच्चों की स्थिति है। वो भी बहुत ही तर्कातीत, तर्क प्रधान थे और अपने पिता और दादा के साथ इसी तरह के द्वंद होते थे। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद जो उन्होंने और 20, 25, 30 साल की जो जिंदगी जी है, ये पूरी तरह से अनुभव पर आधारित जिंदगी है। और इस अनुभव के दौर में उन्होंने अपने बहुत से तर्कों को कसा है, परखा है, उन्हें बहुत अधिक बदला भी है। तो ये तर्क और अनुभव, ये दोनों मिलकर अब डिफरेंट हो गए हैं, या ये कह लीजिए कि वो बुद्ध के थोड़े करीब पहुंच गए हैं, या वो सही मायने में अपो दीपो भव की स्थिति में आए हैं, क्योंकि तर्क में अनुभव शामिल हो गए हैं। और मित्रों, यही जीवन का सर्वोत्तम फलसफा है, सर्वोत्तम फिलॉसफी है, तर्क और अनुभव का तालमेल। मैं परंपराओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाखंडों की बात पाखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो चीज चली आ रही है उन्हें ज्यों की त्यों स्वीकार करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तर्क और अनुभव। मेरे पास पहले तर्क थे, उन तर्कों को मैं जीवन की यात्रा के दौरान मैंने उनको कसा, परखा, देखा, उन्हें परिवर्तित किया, और 55 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 50 के बाद धीरे धीरे उनमें बदलाव आते गए, और 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद अब वो मेरे अपने स्थापित सत्य बन गए हैं, जो केवल न तो तर्क पर आधारित हैं और न केवल अनुभव पर आधारित हैं। उनमें दोनों का सुंदर समन्वय है, कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों का यह सुंदर समन्वय ही जीवन का मध्यम मार्ग है। तो मित्रों, इसके माध्यम से मैं केवल आप लोगों से जो बात कहना चाह रहा हूं कि जो दीपक का प्रतीक है वो केवल ज्ञान का प्रतीक नहीं है, अगर ज्ञान का प्रतीक भी है तो ये एक ऐसा ज्ञान है जिसमें व्यावहारिकता भी है, क्योंकि दीपक जलने के दौरान अपने को नष्ट करता है। ज्ञान प्राप्ति के दौरान अपने को हम नष्ट नहीं करते, अनुभव में हम अपने को नष्ट करते हैं, ज्ञान में नष्ट नहीं करते। तो किताबों में भरा पड़ा है, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन जब हम अनुभव की प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसी ज्ञान को जब हम अप्लाई करते हैं, नष्ट तो हम अपने आप को तब करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर टकराते हैं, फिर गिरते हैं, ये अपने को नष्ट करना ही तो है। हम तिल तिल करके अपने को जलाते हैं और तब कहीं जाकर के अनुभव की एक बत्ती हमें मिलती है, और फिर उस बत्ती को हम अपने हृदय और बुद्धि के दीपक में रखकर अपने लिए प्रकाश पैदा करते हैं। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने ये विषय चुना था। मुझे नहीं मालूम कि ये विषय आपको कितना उपयुक्त लगा होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा गंभीर भी आपको महसूस हो, सरल से सरल बनाने की मेरी कोशिश रही है। और इसी के साथ ही मित्रों, अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।